चाहोगे हो बरकत कारोबार में तो सीखो जो बताया शरीयत ने हमको अहकाम-ए-तिजारत।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला अहकाम तिजारत के साथ हाजिर हैं। मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपके सवालात होंगे और मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे और इंशाअल्लाह मदनी चैनल के दीगर नाज़रीन भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे और फिर इंशाअल्लाह आपके सवाल के साथ मुफ्ती साहब की बारगाह में हाजिरी देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी पहली कॉल दीजिए।
मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अतारी है, मैं बहावलपुर पंजाब से अर्ज गुजार हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स काश्तकारी करता है और उसने अपनी जमीन के साथ जो रास्ता आने जाने वालों के लिए होता है उसको काट कर अपनी जमीन में शामिल कर दिया है और उसमें भी फसल वगैरह बो दी है, अब आने जाने वालों को सवारी गुजारते हुए दिक्कत होती है, मुश्किल आती है, कभी कभार तो ऐसा होता है कि सवारी जमीन के अंदर भी उतर जाती है और इस तरह फसल खराब होती है, तो ये फसल जो खराब होती है इसका गुनाह किसके सर पे होगा? जो आने जाने वाले हैं उनके सर पर होगा या जिसने फसल बोई है उसके सर पर होगा? इस हवाले से थोड़ा तरबियत फरमा दें।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। عین ممکن ہے کہ وہ جگہ اس کی اپنی ہو, ایک وقت تک تھا کہ اس نے راستہ چھوڑا ہوا تھا لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اس نے کہا چلو اس پہ فصل لگا دیتے ہیں, تو نجی زمینوں پر بھی راستے بنے ہوتے ہیں, یہ بھی احتمال ہے और यह एहतमाल भी है कि वाकईतन उसके वो ज़मीन ही ना हो और वो रास्ता हो। तो अब आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि बिल्कुल रास्ता बंद नहीं किया, जब भी वहाँ से गुजर भी रहे हैं लोग और आपने कहा कि फसल पर भी चढ़ जाते हैं, तो जितना रास्ता बनता है गाड़ी गुजारने के लिए एक माकूल रास्ता है वो तो बहरहाल होना चाहिए। और इसकी अपनी ज़ाती ज़मीन है तो ये खुद मुख्तार है, चाहे तो ना छोड़े, और अगर वो ज़मीन उसकी नहीं है और फिर तो हुकूक अम्मा तलफ हो रहे हैं ना, यानी रास्ता जो है रास्ते का शुमार हुकूक अम्मा में से है, हर खास व आम को ये हक हासिल है कि वो उसको इस्तेमाल कर सके, उसके ऊपर किसी की इजारादारी नहीं हो सकती। तो दोनों सूरतें मैंने बयान कर दी हैं, जो भी सूरत दरपेश हो उसके मुताबिक अमल किया जाए।
ठीक है मुफ्ती भाई, ये इन्होंने जो पूछा कि अगर बैल उतर गया या गाड़ी उतर गई है उसमें जो भी गाड़ी है उनकी और वो फसल खराब हो गई है,
देखिए ये तो अगला अब बैलगाड़ी का समझना तो कम होता जा रहा है,
जैसे जो भी गाड़ी है।
हाँ तो अगला जो पहलू है ना ये
जी,
रास्ता किसका है पहले तो उस पर है ना,
ठीक है,
हकूक अम्मा तलफ हो रहे हैं
जी,
उसने रास्ते पर ही फसल लगा दी है तो इसको यही कहा जाएगा कि भाई ये फसल आप क्यों लगा रहे हैं?
ठीक है, ये तो खराब होनी है, फिर
तो खराब होने पर उसने पेश किया उसको,
ठीक है,
तो देखा जाएगा सूरत हाल क्या है,
ठीक,
वो क्या कहता है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि मैंने 5.5 लाख रुपए के चावल खरीदे जो मैंने अपने चचा जान को पैसे अदा कर दिए, लेकिन चावल अभी तक उसी के पास है, रेट भी बढ़ चुका है, उन्होंने कहा था कि जब रेट बढ़ जाएगा तो आप चावल बेच दीजिएगा, तो जरा मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि क्या इस तरह कारोबार करना जायज है? शरई रहनुमाई फरमाया।
4.5 लाख रुपए के उन्होंने चावल खरीदे,
5.5 लाख के,
क्या किया फिर?
खरीद लिए लेकिन रिसीव नहीं किए, जिनसे खरीदे थे उन्हीं के पास रखे हुए हैं और अब रेट बढ़ गए तो अब ये बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते?
देखिए इसके अंदर मामला सिर्फ इतना आ रहा है कि आपने अपना कब्जा नहीं किया उस चीज पर, तो पहले आप अपना कब्जा कर लें फिर आगे बेच सकते हैं।
ठीक,
قبضہ کرنا ہوگا. قبضے کی کئی صورتیں ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مال تو دے دوں گا, ابھی ڈن نہیں کر رہے, جب مال اٹھے گا اس وقت سودا ڈن کریں گے. آپ نے گاڑی میں مال لوڈ کروایا, اس کو کہا کہ بھی ہاں ہمارا سودا فلاں قیمت پر ڈن ہے, تو ان کی گاڑی پر لوڈ ہوا ہے تو قبضہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی قبضے کے آسان طریقے بھی ہیں. تو پہلے تو قبضے کی اہمیت سمجھنی ہوگی. ایک صورت یہ ہے کہ ان کا مال
جی,
یعنی اس لاٹ میں کسی اور کا مال نہ ہو.
ٹھیک ہے,
لاٹ ہو کسی اور کا مال ہو تو اٹھوا دیا جائے وہاں سے.
صحیح,
سامنے والا کہے کہ بھئی یہ آپ کا مال ہے, آپ چاہیں تو یہ لے جائیں.
صحیح,
یہ اس نے تخلیہ دے دیا ہے.
ٹھیک ہے,
قدرت دے دی ہے کہ یہ مال لے جایا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اٹھایا جا سکتا ہے,
اٹھایا جا سکتا ہے.
ٹھیک
ہے, یہ کیفیت بھی قبضے میں شمار ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں مال مکس پڑے ہوتے ہیں, امتیاز ہی نہیں ہوتا کون سا مال کس کا ہے.
ٹھیک,
تو وہاں تو پھر تخلیہ بھی نہیں پایا گیا. یا مثال کے طور پہ گھر کے اندر فیملی رہ رہی ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تخلیہ پایا گیا یہاں پر, جب اس کے اندر کوئی آلریڈی موجود ہے. تخلیہ کیسے پایا گیا؟ سپردگی تو پائی نہیں گئی وہاں پر. تو ڈفرینٹ صورت میں نے مثال کے طور پہ بیان کی ہے, ڈفرینٹ صورتیں ہیں.
صحیح,
جہاں تخلیہ پایا جا رہا ہے وہاں جو ہے نا یہ کافی ہوگا.
ٹھیک ہے مفتی, انہی کو بھی بیچ سکتے ہیں بالفرض؟ انہوں نے بیان تو نہیں کیا سوال میں, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کسی سے خریدی چیز اور بعد میں جو ہے اسی کو بیچنا چاہ رہے ہیں, تو اب بھی ان کو بھی بیچ سکتے ہیں؟ کوئی ایشو تو نہیں؟
ایشو تو آئے گا, کیونکہ حدیث پاک میں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سودے سے منع فرمایا ما لم یدمن, یعنی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربح ما لم یدمن. پیارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اس سودے کے نفع سے کہ جو سودا, وہ چیز جو آپ بیچ رہے ہیں, وہ آپ کے اپنے زمان میں نہ آئی ہو. تو اپنے زمان میں آنا ضروری ہے, اپنے رزق پر, اپنے خطر پر یہ آنا, یہ قبضہ ہے.
ٹھیک,
وہ تو آئی نہیں ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
محمد امیر ستاری عرض کر رہا ہوں بہاولپور سے. تو شریع رہنمائی مفتی صاحب سے یہ چاہیے تھی کہ ایک ایڈ بنانے والی کمپنی ہے, اس میں انویسٹمنٹ کرنا اور اس کی طرف سے آنے والا جو منافع ہے وہ حاصل کرنا ہمارے لیے شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
دیکھیے, ایڈ بنانے والی کمپنی, تو ایڈ میں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ میوزک بھی ہوتا ہے, عورتیں بھی ہوتی ہیں, ان چیزوں سے کوئی ایڈ خالی نہیں ہوتا, اور پتہ نہیں کیا کیا مفاسد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کس طریقے سے وہ لوگ سلیکشن کرتے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے, کس طریقے سے ترجیحات ہوتی ہیں, کس طریقے سے پیمائشیں ہوتی ہیں, علامان ولافیز. تو فی الحال تو کوئی ایسا ایڈ چلتا ہم نے نہیں دیکھا کہ, یا سنا نہیں ہے کہ جس میں جناب عورتیں نہ آئیں یا میوزک نہ آئے. تو یہ چیز تو ایک مروج ہے
مفتی. اب یہ تو ویڈیو ایڈورٹائزمنٹ جو ہے, یا جو ہمارا اس طرح کا میڈیا ہے اس کی بات ہے, لیکن دو کمپنیز اور ہوتی ہیں ایڈ کی. ایک تو ہماری یہاں لوکل انوائرمنٹ میں بات کر رہا ہوں, ایک تو وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں یا ایجنسیز کہلاتی ہیں, اور ان کا کام اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایڈ لگوانا ہے, کوئی اشتہار لگوانا ہے, کوئی اعلان کسی پرنٹ میڈیا میں لگوانا ہے, تو وہ سہولیات دے رہی ہوتی ہیں. جیسے عمومی طور پہ کرائے کے گھروں کے یا بکنے کے گھروں کے آ رہے ہوتے ہیں, جابس کے آ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ بہرحال کہلاتی ہے, اگرچہ ان کے سوال میں تو نہیں تھی.
اچھا,
وضاحت. تو وہ صرف ایک مڈل مین کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں, وہ ان سے کچھ ریٹ پر لیتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ بھی, لائن کے اعتبار سے ریٹ ہوتے ہیں, اور پھر وہ اخبارات میں کیونکہ ان کے لنک ہوتے تو وہ ڈائریکٹلی لگوا دیتی ہیں.
لنک کے علاوہ بچت بھی ہوتی ہے نا.
جی جی, بچت
کہ بھائی ایک آدمی جائے گا, دھکے کھائے گا, ملاقات کرے گا, کس سے ملنا ہے, کیا کرنا ہے.
جی جی,
تو اخبار والے بھی آؤٹ سورس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں.
جی جی,
دیکھیے انویسٹمنٹ میں تو نہیں ہوتی اس طرح کمپنیوں میں,
ایجنسیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی.
اچھا
جی,
ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کل بلڈر حضرات,
جی
بلڈر حضرات یہ کرتے ہیں کہ بھائی ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کو پروجیکٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں, آپ نے اس کی تشہیر کرنی ہے.
ठीक है
फिर वो पेनाफ्लेक्स पे छापेंगे तो अखबार में भी देंगे
जी,
इंटरनेट पर भी देंगे जिस तरीके से भी देते हो, बस गुनाह ना हो उस काम में।
ठीक,
खिलाफ शरा कोई भी काम ना हो, अगर खिलाफ शरा कोई काम है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें।
ठीक,
और जब भी सवाल पूछें तो नोयत बता दिया करें कि एडवर्टाइजमेंट से आपकी कौन सी किस्म की जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट मुराद थी, और कोई भी सवाल करें तो थोड़ा सा ऐसा इशारा हो कि बंदे का जहन वहां तक चला जाए।
जी, और इसमें शायद ये होता होगा कि आपकी जो फील्ड है आपके जहन में तो क्लियर है कि मैं तो इससे मुतालिक कर रहा हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ बैठे तो मुफ्ती साहब के सामने चार और फील्ड भी है जो इसी तरह का काम होता है और मुमकिन है सबके अहकाम अलग अलग हों, तो वजाहत कर दिया करें। अगली कॉल दीजिए।
इस सिलसिले में ये मेरा सवाल है कि मेरे रहनुमाई फरमाए कि हम बेंगलोर वगैरह या अपार्टमेंट वगैरह ये देते हैं, क्लाइंट ऐसे आते हैं कि जो पहले से कहते हैं कि हमें जो है वो इस तरह का बंगला या अपार्टमेंट दिलाएं कि जिसके डॉक्यूमेंट क्लियर हो ताकि हमें बैंक से लोन लेना है फिर ही हमें घर लेना है। बाद ऐसे क्लाइंट भी आते हैं कि जो पहले नहीं बताते, विजिट करने के बाद पसंद करने के बाद बताते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट वगैरह के हवाले से देख लें कि हमें जो है वो लोन लेना है, मीटिंग भी हो जाती है बाज़ औक़ात। तो पूछना ये था कि अगर कोई पहले से हमें बता दे कि लोन पे हमें ये घर लेना है तो हमारा उसको घर दिलवाना दुरुस्त रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि मीटिंग के बाद दिखाते भी देते हैं, विजिट भी हो जाता है, मीटिंग के बाद अगर कोई ये इस बात का इजहार करता है तो उस सूरत में उसको पाए तकमील तक डील को पहुंचाना है या हमें रोकना है, शरीयत के हवाले से हमें दुरुस्त रहनुमा इरशाद फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
असल में लीज प्रॉब्लम होती है, जिस जगह की लीज नहीं होती आमतौर पर वहां लोन मिलता नहीं है। फ्लैटों के अंदर ये मामला होता है कि बिल्डर हजरात जो फ्लैट इशू करते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन जब तक ये होता है उस वक्त तक तो वो जाहिर बात लीज नहीं देते, और बनने के बाद भी बाज़ औक़ात इस तरह के टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनके पास कि गाहक को एहसास ही नहीं होता कि मुझे लीज नहीं मिली है, या बात सरातन कह देते हैं हम लीज नहीं देंगे। तो मायदे के अंदर पता होना चाहिए कस्टमर को जब वो करने लगे उसको लीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। चले इनके सवाल पर आते हैं। इनका सवाल जो है वो ब्रोकरी के हवाले से है
जी,
कि ये सौदा करवाते हैं
जी।
तो ये जिस चीज का सौदा करवा रहे हैं वो एक पाक चीज है, हलाल चीज है, खरीदना भी जायज है, बेचना भी जायज है
जी।
जिस चीज का खरीदना जायज हो, बेचना जायज हो, उसके अंदर मुआवनत करना भी जायज होता है। तो बुनियादी तौर पर तो सेल परचेज जो हो रही है वो एक दुरुस्त काम की हो रही है, कोई उसमें गलती नहीं है। अब जो गलती हो रही है वो पार्टी की अपनी सवाबदीद है, वो क्या करती है आगे, करती है नहीं करती है वो एक अलग बात है। मिसाल के तौर पर सौदा हो गया, सौदा होने के बाद जो है वो सामने वाला आदमी जो है वो कुछ ऐसे पैसे उठाकर ले आता है कि उसको नहीं लेने चाहिए।
ठीक,
अब इससे ब्रोकर का ताल्लुक नहीं है, उससे ताल्लुक है कुछ चीजों का ताल्लुक मालिक से बनेगा ज्यादा से ज्यादा।
सही,
लेकिन यहाँ तो मालिक का भी ताल्लुक शायद ना बने।
ठीक है,
क्योंकि इसलिए नहीं बनेगा कि जो लोन मिल रहा है
जी
इस पर जो इजाफा बैंक को दिया जाएगा वो सूद होगा।
ठीक है,
लेकिन वो पैसा जो है वो पाक है।
सही,
कर्ज पाक है।
ठीक है,
कर्ज पर जो नफा दिया जाएगा वो नापाक रकम होती है।
ठीक है,
तो यहाँ तो मालिक के हवाले से भी कोई ऐसी चीज नहीं है।
ठीक है,
तो ब्रोकरी बहरहाल ऐसे चीज की जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी सूरत हाल जो है उसमें हसासियत है। हसासियत इस एतबार से है कि अब मुमकिन है ब्रोकर मशवरा देना शुरू कर दें कि जनाब आपको तो बड़ा अच्छा लोन मिलेगा इस पे, इस पर तो बैंक वाले आपको यूं जनाब एकदम करके राजी हो जाएंगे, आप बताएं मैं बताता हूं आपको कहां से लोन मिलेगा। अब जो अगले स्टेप शुरू होंगे वो ऐसे स्टेप होंगे कि जिसमें आप उस गुनाह के काम में मुआविन और मददगार बन गए। ऐसा ही है कि एक आदमी जो है वो शराब नहीं पीता, शराब को बुरा समझता है, लेकिन कोई पूछने आया हमें शराब कहाँ मिलेगी तो कहता मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगी। ये अब बराह रास्त मामनत है।
ठीक,
तो इस चीज का ख्याल रखा जाए कि आप उस पूरे मामले से लातालुक रहें, उसमें आपकी कोई बराह रास्त मामनत शामिल ना हो।
ठीक, और मुस्लिम पार्टी जैसे आपने फरमाया कि जरूरी भी है और पार्टी पूछती है तो ब्रोकर कहता है कि जी डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट इदारे में जाएंगे, कानूनी इदारे में जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स ओके
हैं? डॉक्यूमेंट ओके होने का सवाल तो ऐसा है ना,
जी
जो एक बुनियादी सवाल है
जी
कि डॉक्यूमेंट की ये कंडीशन है, ये सूरतयाल है, फलां पेपर है या फलां पेपर नहीं है, इससे बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है। बैंक इन्वॉल्व होता हो या ना होता हो,
ठीक,
पार्टी का वैसे ही राइट है
जी,
तो इस तनाजुर में भी बताना उसमें कोई हर्ज नहीं है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मेरा सवाल ये है जी, मैं कारोबार करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, ते जो चीज किसी ना मोक लेन पैसे, यानी कि मैं टीवी बना रही हूँ, 1000 रुपया मोक लिया है, वो गाहक जिद कर लेंगे ना जी पहले सन पैसे दसो असि मोक लेन पैसे, उसके बच्चे साडा काम होया 500 का, असि वो 1000 लैन के हकदार हैं जो 500 लैन के
जी। देखिये जो आपने टे किया है वो आप ले सकते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने तय किया कि फला चीज खराब है, मैं ये सही करके दूंगा, एक ये सूरत हो गई। दूसरी चीज आपने ये तय की कि भाई इसकी खराबी दूर करना मेरा काम है, फला चीज खराब है या फला चीज खराब है उसका आप बताइए ना, ये भी ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जनाब आपने कहा कि भाई ये चीज खराब है और वो चीज खराब नहीं थी, तो फिर वहां थोड़ी सी जो है वो देखा जाएगा कि पैसे कम लेना चाहिए ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसके पैसे मुका लिए हैं कि इतने पैसे हैं और वो पैसे आप लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, मुझसे ये इस तरीके के मामलात में एक सूरत ये भी होती है, बाज़ूकात कस्टमर कह देता कि जी जो मार्केट रेट हो या जो आपकी जो आप दुरुस्त समझो या जो ईमानदारी से बनते हो ना वो ले लेना। अच्छा, उसने कह दिया जी 1000 रुपए। अब वो काम तो क्योंकि टेक्निकल काम होते हैं इसमें बाज़ूकात पैसे तो बहुत कम लगते हैं, असल उजरत तो उनकी कारीगरी की होती है, वो 100, 200, 300 लगे, तो अब ये दुरुस्त होगा?
देखिए जब बात आती है ना कि जो आप ईमानदारी वाली बात हो वो ले लो, ये बात तो बड़ी नाजुक हो जाती है, यानी उसके ऊपर एक जिम्मा आ गया,
ठीक है,
एक दयानतदारी आ गई
जी।
अब बात प्रोफेशनलिज्म से आगे निकल गई,
ठीक,
प्रोफेशनलिज्म तो ये था ना, भी बार्गेनिंग करना उसका हक है, पैसा मांगना उसका हक है,
ठीक है।
अब बात कहीं और चली गई, वहां बात अगर जाती है तो फिर उसके तकाजे पूरे करने होंगे, या तो आप बात वहां जाने ना दें। आप कहेंगे यार देखें भाई मैं अपना रेट बता रहा हूँ, आप मार्केट चेक कर लो,
सही
कम है ये रेट ज्यादा है ये रेट, मैं इस पर कुछ नहीं कहता, मार्केट चेक कर लो, सस्ता कंसेप्ट होता है तो सस्ता करवा लो,
सही
मैं इतने पैसे लूंगा,
ठीक है, फेयर बात करें जी।
जी
चले अगली कॉल दें।
जी मेरा मुख्य साहब से ये सवाल था कि हमें कंपनी की तरफ से हायरिंग मिलती है तकरीबन 28,000 रुपए, तो हम इसकी दो सूरतें होती है, होता ये कि हम कोई जगह किराए पे लेते हैं और वो 22 से 23 हजार रुपए में होती है, तो हम मालिक के मकान से बोलते हैं कि आप बकिया के 5,000 रुपए मुझे वापस कर देंगे, मतलब कंपनी में हम यही शो करेंगे कि 28,000 रुपए किराया और 5,000 हम वापस ले लेंगे, तो क्या ये करना जायज है? दूसरी सूरत ये होती है कि हम उसको बोलते हैं कि बिजली गैस और जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो शामिल करके आप किराया 28,700 कर लें, ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो गया बिजली का बिल तो मैं आपको ऊपर से पैसे कर दूंगा, क्या दोनों एग्रीमेंट करना जायज है या दोनों नाजायज?
दोनों ही नाजायज है। वजह उसकी यह है कि दूसरे एग्रीमेंट में तो आपका किराया तय ही नहीं हो रहा, अगर आप बिजली के साथ और पानी के साथ भी अगर तय करते हैं तो उसका फिगर तो तय होना चाहिए ना भाई, कि भाई उसका इतना फिगर है,
ठीक,
उसमें तो आपका किराया पता नहीं कितना किराया है भाई, कम है ज्यादा है कितना है, तो उस एतबार से वो गलती है। और जो पहली सूरत है वो ये है कि कंपनी अगर ये कहती है कि घर जितने का आए उतना हम किराया देंगे, जितने का किराए पर मिले और 30,000 तक की आपको सहूलत है, वो आया 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए किराए पर घर मिल गया, तो 5,000 रुपए कंपनी से ज्यादा नहीं ले सकते आप।
ठीक,
अब लोग ये कहते हैं जी हमें तो चूंकि फैसिलिटी इतनी हासिल है लिहाजा वो पैसे तो हम लेने ही लेने, जेब में रखने रखने हैं, 5,000 रुपए से क्या होगा, मतलब बात दिल की होती है, दिल के अंदर अगर हवस है ना कि भाई सही हो या गलत हो बस ले लो ले लो ले लो, अगर दिल को मनाने वाली बात है, मतलब बंदा किस तरह मनाए, बंदा कई तरीके से मना सकता है कि इस 5,000 से मैं कितना फायदा उठा लूंगा, मुझे बचना चाहिए, ये गलत है, ये गैर का हक है, मैं झूठ बोल कर लूंगा, धोखा दे के लूंगा, तो इस तरीके से वो अपने आप को मनाए और ये पैसे इस्तेमाल ना करे, जितने यहाँ घर आता वो इस्तेमाल करे।
साहिल का सवाल का जवाब तो आपने इरशाद फरमा दिया और एक बात भी इरशाद फरमाई कि 5,000 से क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं साहब इस दुनिया में, हम भी देखते हैं और जाहिर सी बात है मदनी चैनल के नाजरीन भी इस चीज को महसूस करते होंगे कि बाज़ औक़ात 5,000 की रकम बड़ी है। इससे भी छोटी छोटी रकम पे, वो होता ही है कि एक चीज है ना कि आपको उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगी, या वो नहीं, आपको एफर्ट्स कुछ नहीं करनी, जरा सी जबान हिलानी है, जरा सा कागज का रद्दो बदल करना है, और आपको सूखे सूखे 2,000, 5,000, 10,000, 5 लाख, 5 करोड़ जो है वो आपके खाते में आ जाने। तो अब ऐसे मौके पे ईमानदारी पर साबित कदम रहना, दयानतदार रहना, और एक जो है जो हक मेरा नहीं है उसको जाने देना कि जाने दो।
देखिए दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं ना
जी,
इसमें लेक्चर देने वाले और बातें करने वाले उनकी कमी नहीं है।
ठीक,
एक से बढ़कर एक मिलेगा।
सही,
मोहल्ले में बैठ जाए जिसने नमाज भी नहीं पढ़ी होगी ना एक भी
जी
पूरी जिंदगी में, वो भी जनाब इमाम मस्जिद पे लेक्चर दे रहा होगा।
ठीक है,
कि उसको यूं करना चाहिए और यूं करना चाहिए। फिर कुछ लोग वो होते हैं कि जो बहुत सारी बुराइयों से बचते हैं,
सही,
लेकिन कुछ चीजों में दिल के कमजोर होते हैं, खास तौर पर यानी एक होता है नफ्स, इंसान की जात से वाबस्ता बुराइयां
जी,
कि वो अपनी निगाह की हिफाजत कर लेता है, वो कोई शराब नहीं पीता, उसका जो ना बदन किसी गुनाह में इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं।
ठीक है,
अब इससे एक अगली चीज आती है, अब ये भी कश्मकश होती है, कोई ऐसा होता है जो माली हराम से बच रहा होता है, जो बदनी हराम है उसमें मुब्तला होता है।
ठीक,
हर एक डिफरेंट, हर एक आदमी की डिफरेंट कमजोरियां होती हैं।
ठीक,
और दुश्मन अटैक हमेशा कमजोरी पर करता है।
अल्लाह,
दुश्मन हमारा शैतान है।
सही,
उसने तो उस कमजोरी के जरिए गुनाह करवाना है।
सही,
तो कमजोरी होती है। माल के मामले में बहुत सारे लोग बह जाते हैं
जी,
यार माल के मामले में कैसे कंप्रोमाइज करें, मुझे तो आगे बढ़ना है, यहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचना है। तो बात यह है कि दिल का पक्का होना पड़ेगा, अज़्म मुसम्मम, तौबा इसी को कहते हैं ना, कि वो गुनाह मैं कभी नहीं करूंगा, ये अज़्म मुसम्मम हो, तौबा कहलाती है। तो तौबा तो हमें यह सबक देती है कि आपके अंदर अज़्म मुसम्मम होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, और दुनिया का नुकसान सारी चीजें एक तरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी, उसके महबूब अलैहिस्सलाम की रजामंदी एक तरफ।
ठीक है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा, कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इस्तेकामत भी मिल ही जाएगी। अगली कॉल दीजिए।
मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि क्या मैं माल स्टॉक कर सकता हूँ, मतलब कपड़े का काम करता हूँ, अब सर्दी है तो गर्मी आने से पहले मैं कपड़ा स्टॉक कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, ताकि अब ठीक दामों में मुझे मिल जाएगा, जब गर्मी आएगी तो उसके दाम तेज होंगे, तो इसमें शरीयत का क्या हुक्म है, मैं खरीद के स्टॉक कर सकता हूँ उस कपड़े को, क्या मेरे लिए वो मुनाफा जायज होगा?
जी आप स्टॉक कर सकते हैं कपड़े को, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ना कोई कानूनी पाबंदी होती है कपड़े के ऊपर, और ना ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई कैद पड़ा हुआ है और कपड़ा खाने के काम आता है, तो कोई हर्ज नहीं उसके स्टॉक करने में।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मोहम्मद सलीम रजा अत्तारी अहमदपुर शर्किया मेहरावाला से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि अक्सर किराए पर मकान भी और दुकानें भी दी जाती हैं और उसमें एडवांस लिया जाता है, और ये तय होता है कि आपको जिस हालत में ये मकान या दुकान आपको दे रहे हैं इसी हालत में आपने हमें वापस करना है, तो जब वो दुकान या मकान छोड़ा जाता है तो उस हालत में नहीं होता है, कुछ ना कुछ टूट फूट या मुरम्मत का काम होता है, तो अब जब वो दुकान छोड़कर मकान छोड़कर जाते हैं तो अपना पैसा वापस मांगते हैं, वो जो दुकान या मकान की खराबी होती है उसका मुआवजा नहीं देते, तो क्या जिसका नुकसान हुआ होता है वो उस एडवांस में से वो पैसे काट सकता है, या इस मसले का हल कैसे निकाला जाएगा, इस मामले में रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए।
ठीक है, देखिए वैसे तो ये पैसे रुकने का मकसद ये होता है कि कोई शख्स पतली गली से ना निकल जाए, रातों रात सामान उठाया पता चला कि यूटिलिटी बिल चढ़े हुए हैं और के घर के अंदर नुकसान हो गया, ये सब चीजें जो है वो ना हो। लेकिन असल चीज ये है कि बैठकर बात करनी पड़ती है, यानी पैसे रुकने का मकसद ये नहीं है कि ये आपके हो गए जो मर्जी करें, अगर आपको कोई दावा है कि ये मसला यूं हुआ है, उस पर सामने वाले से आप बात करेंगे कि भाई ये मसला है, वो अपना क्या मौका पेश करता है, मिसाल के तौर पर खिड़की टूट गई है, शीशा टूटा हुआ है, वो कहता है कि भाई मैंने नहीं तोड़ी है, बाहर से किसी ने पत्थर मारा था, अब उसका जब कसूर ही नहीं है, बाहर से किसी ने पत्थर मारा है तो ये पैसे क्यों देगा, इस पर तो पैसे नहीं बनते, بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس نقصان کس طرح کا ہے اور یہ نقصان کس کے اوپر آئے گا، پھر فیصلہ ہوگا.
ٹھیک ہے، مطلب کھڑکی وغیرہ کی آپ نے مثال دی اس طرح کا نقصان. ایک چیز جس پہ میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے رنگ و روغن ہے، اب یہ ظاہر سی بات ہے جب کرائے پہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کرا کر دیتے ہیں، اور پھر ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جی یہ رنگ خراب نہیں ہونا چاہیے، یا آپ نیا کرا کر دے کر جائیں گے ہمیں، یا پھر آپ اس کی پیمنٹ کریں گے، یہ تقاضا درست ہے؟ کیونکہ رنگ تو ایسی چیز ہے، وہ خراب تو ہوگا، کچھ نہ کچھ ویسا تو نہیں رہے گا جس کنڈیشن میں دیا، دھبے آ جاتے ہیں، اسکریچ پڑ جاتے ہیں.
دیکھیں فریقین کا اس طرح کا جو معاملہ ہے نا
جی،
اس میں یس اور نو نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے،
کئی ایسی جگہ ہیں جہاں بارش کا پانی رستا ہے
جی،
رنگ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے
جی.
ممکن ہے وہاں پر جو نا وہ بچوں نے پینسلوں سے لائنیں ماری ہوئی ہوں،
ٹھیک ہے،
جو تو قصور ہے سیدھا سیدھا.
ٹھیک،
ممکن ہے میل وہاں اتنا جم گیا ہو
جی،
انہوں نے خیال نہیں رکھا اس کا، یہ بھی کسی حد تک قصور میں آئے گا. تو اس کا انداز کیا ہے
صحیح،
خراب ہونے کا کیا ایسی صورت ہے جس پر اس کو کروانا پڑے گا؟
ٹھیک،
اچھا پھر کتنا کروانا پڑے گا جناب؟ رنگ والے کو آپ بلائیں، وہ کہتا جی یہ تو سارا اکھاڑوں گا، میں لاپی کروں گا، میں یوں کروں گا، تو بھائی کتنا کروانا پڑے گا؟ تو ڈیٹیل والا معاملہ ہے یہ.
ٹھیک،
رنگ کو ویسے بیچ میں رکھنا ہے بڑا رسک، بہت نازکی معاملہ ہے، تھوڑا سا کرایہ زیادہ لے لیں بھائی، رنگ والے معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے. جو فیملی آئی ہے وہ مجبور محض ہو کر کیسے رہ سکتی ہے؟
صحیح، کچھ نہ کچھ تو ڈسٹرب ہوگا،
ڈسٹرب ہوتا ہی ہوتا ہے.
ٹھیک، اپنے گھر میں بھی ہوتا. بھارت، چلیں جی اگلی کال دیں.
سوال یہ ہے کہ کیا کوئی امپلائی اپنے ادارے کی پرچیزنگ میں ایسی چیزیں خرید کے دے سکتا ہے جو وہ خود بھی تیار کرتا ہو؟ جیسا کہ اگر اس سے کہا گیا کہ آپ ہمیں ادارے کو صابن خرید کے لا کے دے دیجئے، وہ اس ادارے کا ملازم بھی ہے اور وہ خود بھی صابن بناتا ہے، تو وہ صابن خود تیار کر کے اپنے ادارے کو بیچ دے مارکیٹ کے مناسب ریٹ پر اور وہ مناسب کوالٹی پر.
مفادات کا ٹکراؤ جو ہے نا، یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے. یعنی آپ کے ادارے نے اگر آپ کو پرچیزر بنایا ہے، تو آپ اپنے ادارے کے کیا علم میں لائیں گے کہ یہ میں نے جو نا اپنی کمپنی سے خریدی ہے، یا چوری چھپے یہ کام کریں گے؟
عمومی طور پہ تو شاید یہ بتایا نہیں جائے گا،
بتایا بھی نہیں جائے گا نا
جی، بلکہ اپنے بھائی سے بھی خرید رہے تو بھی شاید نہ بتا.
ہاں، تو ادارے کا مفاد مقدم نہیں رہے گا.
ٹھیک،
یعنی مارکیٹ میں اگر سستا مل رہا ہوگا یہ چاہے گا میں یہاں سے لوں،
صحیح،
اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤں.
ٹھیک،
مارکیٹ میں جو ہے وہ ادھار پہ مل رہا ہوگا یہ وہاں نہیں جائے گا. یعنی کمپنی کے جو مفادات اور فوائد ہوں گے نا
جی،
وہ پیچھے رہ جائیں گے، اپنے جو مفادات ہیں وہ آگے چلے جائیں گے.
ٹھیک،
تو بھائی آپ کو سیلری جو ملتی ہے، آپ کو جو معاوضہ ملتا ہے، وہ کس کام پر ملتا ہے؟ وہ جو کام ہے معاوضے کا، وہ جو کام ہے سیلری کا، اس کا تو مقصد یہ ہے نا کہ آپ جو ہیں وہ کمپنی کے لیے کام کریں. بیچ میں یہ آپ کی کمپنی کہاں سے آ گئی؟ میں اس کی خرابیاں بیان کر رہا ہوں، بات ابھی یہ نہیں ہو رہی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا کیا ہے، خرابیاں بہت زیادہ ہیں. پھر تو دیکھا جائے گا کس طریقے سے خریدی، کیا طریقہ کار اپنایا گیا، اس کو سامنے رکھ کر پھر بات ہوگی.
ٹھیک ہے، مصعب، اگر اس میں کوئی یوں کہے یا دل بہلائے، ایک جو عمومی طور پہ آ سکتی ہے چیز وہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جناب میرے ادارے کا کام ہے پرچیزنگ کرنا، ادارے کے لیے جو میں جاب کر رہا ہوں اور جو میری جے ڈیز ہے وہ ہے پرچیزنگ کرنا اور ادارے کے مفادات کو پیش نظر رکھنا اس ٹائم سے اس ٹائم کے ڈیورنگ. اب میں اپنی جو جاب ٹائمنگ ہے اس میں تو نہیں کر رہا یہ کام، اور دوسری بات یہ کہ یا جاب ٹائمنگ میں ہو رہا ہے تو میرے ذریعے سے نہیں ہو رہا یہ کام، کسی اور کو فریق بنا رہا ہوں، کوئی ملازم رکھ لیا ہے، کوئی اس طریقے کا کوئی ورکر رکھ لیا. دوسری بات یہ کہ ادارے کا نقصان یوں نہیں ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں جس ریٹ پہ مل رہی ہے وہی چیز میں اس ریٹ میں دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ
میں نے سوال کیا نا، کمپنی کو آپ بتائیں گے؟
وہ تو نہیں بتائیں گے.
ٹھیک ہے نا،
مجھے نہیں لگتا کہ بتائیں گے.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نمائندہ ہے نا
جی،
وکیل ہے، کمپنی کے مفادات کو ترجیح دے، کمپنی جو چاہتی ہے وہ کرے.
ٹھیک ہے،
جب کہ شریعت سے نہیں ٹکراتا ہو تو. تو جب کمپنی نہیں چاہتی کہ یہ اپنے یہاں سے خریدے
جی،
پھر یہ کیوں خرید رہا ہے؟
ٹھیک،
یہ ایشو ہے.
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
میرا ایک دوست ہے سر، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بچے نہیں ہے نا، اس کے بچے نہیں ہے، تو اس کے پاس جو مکان تھا وہ تو بہنوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا، ظاہر ہے اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی ڈیتھ ہوگی، اور اس کے جو ہے نا پاس کوئی پیسے تھے، رقم تھی کسی دوست کے پاس، 8-1 लाख रुपया, क्या वो उसकी बीवी को मिलेगी या उसकी बहनें मांग रही है, हमारा भी हक है, उनको भी मिलेंगी या सिर्फ उसकी बीवी को मिलेगी?
बच्चे भी हैं, ये बता रहे हैं ना
जी? बच्चे नहीं है, इनके तो बच्चे नहीं है, जिनका इंतकाल हुआ उसके बच्चे नहीं,
बच्चे नहीं है
नहीं।
देखिए इसका आसान सा तरीका ये है कि वर्सा बता के फतवा ले लें कि उसके माँ है, बाप है, मिसाल के तौर बाप है, बाप है तो बहनों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बहन के भाई हैं तब भी कुछ नहीं मिलेगा, बाप नहीं है तो फिर स्रोत और होगी, माँ नहीं है तो बहन भाइयों का ऐसा बढ़ जाएगा, तो डिफरेंट स्रोतें बन सकती हैं, विरासत की जो कवानीन है उसके मुताबिक इस रकम की अदायगी की जाएगी।
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत पे राबता फरमा लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ल, जो आपके करीबी शाख हो या तो वहाँ पे खुद चले जाएं या फ़ोन पे राबता करके मसला समझने की कोशिश कीजिए, ईमेल एड्रेस भी है तो उस पर भी आप राबता कर सकते हैं, फ़ोन करेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी आगे की तफसीलात आपको वहाँ से हासिल हो जाएंगी। अगली कॉल दीजिए।
मेरा कॉल ये है कि मैंने अपने हमसाये को तकरीबन 2 साल से गैस दी हुई है, जो गर्म की गैस दी हुई, लेकिन तकरीबन 2-3 माह मैंने उससे ना तेल लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने ना उसको फ्री दे दी, उसने मुझे उसके बदले में बिजली दी जो मैंने तकरीबन 4-5 माह इस्तेमाल की, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो बिजली चोरी करता है, तो मैंने वो बिजली उतार दी। अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या मैं वो बिजली उससे ले सकता हूँ गैस के बदले में? हाँ, वो चोरी की है।
चोरी की चीज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं
जी, जब ये नहीं पता,
अदले में हो, बदले में हो या किसी भी तरह हो, ये कैसे इस्तेमाल की जा सकती है?
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
शाह हुसैन अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि फौज में हुकूमत की तरफ से एक अलाउ है कि अगर कोई चीज लेनी है तो उसके लिए पैसे ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर सोना लेना है तो सुनार से 3 लाख रुपए का सोना लिया, 3 लाख की पर्ची बनवा कर उनको दे देंगे तो वो हुकूमत की तरफ से 3 लाख रुपया मिलेगा, तो वो फिर थोड़े थोड़े तनख्वाह के अंदर एक किश्तवार होता है तो वो काटते रहेंगे, फिर 3,50,000-55,000 वो काट लेंगे अपना, यानी 3,50,000-55,000 ऊपर काट लेंगे, तो क्या इस तरह पैसे लेना जायज है या नाजायज है, इसकी सूरत बता दे।
देखिए एक तो बेचने वाला नफा लेता है, बेचने वाला 50,000 की चीज लेकर आया, 55,000 की उसने बेची, ये तो है खरीदो फरोख्त। दूसरी सूरत क्या होती है कि मिसाल के तौर पर पैसे देने हैं आपके इदारे ने जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं उसने 3 लाख रुपए देने हैं, और आगे एक कंपनी है, एक बड़ा सप्लायर है, एक बड़ा डिपो है, वहां से आप चीज खरीदेंगे, वहां आपके जो है वो आपके इदारे से उन्होंने 3 लाख रुपए लेके आपको चीज दे दी उधार में, और फिर 50,000 रुपया मजीद आपसे ले लिया और आपने 50,000 रुपया समेत पैसे लुटाए, तो ये खरीदो फरोख्त आपने उस शख्स से जो की है ये उधार में इस तौर पर की है कि आपने अपने इदारे से कर्जा लिया और ज्यादा रकम देकर कर्जा लुटाया। ये जो सूरत है ये सूरत सूद पर मुश्तमिल है, तो इस तरीकेकार को इख्तियार ना किया जाए।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
रोजाना से अर्ज कर रहा हूँ मुफ्ती साहब की बारगाह में, मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स कोई जानवर खरीदे और जिससे खरीदे है उसी के घर में ही है वो और वहाँ पर ही वो उसको सेल कर दे आगे, यानी उसके ऊपर अभी कब्जा नहीं किया, यानी उस जानवर को अपने घर नहीं लेकर आया और उसी के घर पर ही उसको आगे सेल कर दे, तो ऐसा करना कैसा?
नहीं, कब्जा करने के बहुत आसान तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं। फोन करें किसी और आदमी को जिससे खरीदा है, उसको नहीं, किसी और को फोन करें कि यार जरा इससे कब्जा ले लो मेरा, वो रस्सी पकड़े, एक चक्कर बार का लगवाए, वहीं खड़ा कर दे, आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, आपका कोई नुमाइंदा जाके कब्जा कर ले, आप वहीं करीब रहते हैं, आप एक दफा रस्सी पकड़ लें कब्जा हो गया, आप लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं, यही कब्जा है। तो कब्जा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अगर ये जहन बन जाए कि ये एक शरी तकाजा है, हमने पूरा करना है, तो पूरा करने के बहुत आसान रास्ते मौजूद होते हैं।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मेरा सवाल ये है कि मैंने, मुझे ना एक जगह काम मिला है ना, तो उधर ना वो अपना वो शराब वगैरह भी जो है ना बेचते हैं, तो मेरा काम ये है कि गाड़ी चलाने का काम है, तो उसमें वो डिलीवरी वगैरह भी करते हैं, तो मैंने यही पूछना था कि वो अगर हम डिलीवरी वगैरह करते हैं एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उसमें यही मालूम करना था कि जो रोजी होती है वो देते हैं या हराम।
ये काम तो देखिए जायज नहीं है और ये रोजी भी हलाल नहीं होगी, क्योंकि शराब की नकलो हरकत, शराब को उठाना पहुंचाना, ये वो बातें अहादीस मुबारका में सराहत के साथ जिनकी मजम्मत बयान की गई है। तो शराब की डिलीवरी, नकलो हमल या वेटर है तो शराब पेश करता है, ये जो चीजें हैं ये भी हराम काम में मामनत में शुमार होती हैं।
ठीक, मदनी चैनल गाजी, हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।